दिल का करार। आस्था अंश को अपने साथ लेके अरमान के कमरे में आ गई थी। वैसे भी वो आहान को अंश नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था अब आहान को रौनक और अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहिए। अब आगे वेल, काफी रात हो चुकी थी। उसने एक नज़र अरमान पर डाली, जो अब भी गुमसुम सा था। अरमान अपनी बाजू पर हाथ रखकर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। अरमान को बेचैन देखकर आस्था की आईब्रो सिकुड़ गई। अगले ही पल उसे नानी माँ का समझाई हुई बातें याद आ गई। उसे अब अपने पति का और भी अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। यादाश्त खोने के बाद अरमान को कैसा लग रहा होगा, ये बात आस्था अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन अब उसने मन ही मन ठान लिया था कि उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो अपने पति को राजवीर जिंदल के चंगुल से बचाकर रहेगी। अगर राजवीर को अरमान की जान लेनी होती तो वो पहले ही ले चुका होता, लेकिन शायद उसका इरादा कुछ और करने का है। वो उसकी जान नहीं लेना चाहता, बल्कि कुछ बड़ा करना चाहता है। वैसे भी उसके लिए किसी इंसान की जान लेना मामूली बात थी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, वो अपने पति की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती थी। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि इस वक्त उसका पति खुद से ही एक अलग जंग लड़ रहा है, लेकिन अब बस, अब वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेगी और वो अपने पति की सारी यादें उसे वापस लौटा कर रहेगी। ये सोचते हुए आस्था ने एक गहरी सांस ली और अरमान की साइड में लेट गई। अंश पहले से ही सोया हुआ था। उसे अच्छे से थपकियां देने के बाद आस्था ने अरमान की ओर गंभीर नजरों से देखा और आह भरी। क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इस तरह सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आस्था के मुंह से ये सवाल सुनते ही अरमान पूरी तरह चौंक गया। उसने अपनी बाजू पर से हाथ हटाया और आस्था को आश्चर्य से देखकर गहरी मगर धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि सभी लड़कों ने डिसाइड किया था कि वो घर की किसी भी लेडीज को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और वैसे भी घर में काफी कुछ हो गया था, तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बलबूते पर ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते थे, जिसके लिए जल्दी वो सबसे पहले रॉकी को मोहरा बनाएंगे, रॉकी का पीछा करेंगे और फिर राजवीर के डाक विला तक पहुंचेंगे। भले ही आहान ने उन्हें डाक विला का एड्रेस दे दिया हो, लेकिन वो सब एक बार सारी सिचुएशन अपने हिसाब से समझना चाहते थे कि वहां कितने लोग मौजूद हैं और वहां का माहौल कैसा है। ये सब जानने के लिए आकाश, सुमित, साथ ही साथ ध्रुव, अबीर और अविनाश भी वहां मौजूद थे। आहान उस वक्त वहां नहीं था क्योंकि इस वक्त वो घोड़े बेचकर रौनक को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, और उसकी नींद उसकी बेटी की रोने की आवाज से खुल गई थी, जिसे सुनकर वो तुरंत हड़बड़ा उठ बैठा था और रौनक को झुककर उठाते हुए बोला, रौनक रौनक देखो ना, हमारी बच्ची रो रही है। ये इतना क्यों रो रही है? क्या हो गया इसे? क्या इसे कोई परेशानी है? क्या तुमने इसको दूध नहीं पिलाया? क्या तुम इसका ठीक से ध्यान नहीं रख सकती? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी बच्ची की रोने की आवाज इस तरह से घर में क्यों गूंज रही है? देखो रौनक, मैं सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी का रोना मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन रही हो ना मेरी बात? बेबी के रोते ही आहान ने कितनी सारी उटपटांग बातें रौनक को सुना दी थी, जिस पर रौनक थोड़ा सा झल्ला उठी और हैरानी का दिखावा करते हुए बोली, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही सो रही थी ना, तो मुझे कैसे पता वो क्यों रो रही है? हाँ, और तुम मुझे इस बात को लेकर गुस्सा नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं वो मन ही मन मुस्कुराई और मुंह बनाकर सोचने लगी, चलो अच्छा है, अब उसका पति एक बार फिर से नॉर्मल हो गया था और उससे इस तरह की इरिटेटिंग बातें कर रहा है। फिर वो आगे बढ़कर अपनी बच्ची को गोद में ले लेती है और बड़े ही प्यार से उसे होल्ड करके शांत कराने लगती है। वहीं आहान अपनी बेटी को प्यार से निहार रहा था, क्योंकि उसकी बेटी हूबहू उसके जैसे दिखती थी। उसकी आंखें ही नहीं, उन दोनों के नाक और होंठ भी एक दूसरे काफी मिलते जुलते थे। आहान ने जल्दी से अपनी बच्ची को एक मॉर्निंग किस कर दिया और धीमी आवाज में अपनी बच्ची से कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, आज के बाद पापा के सारे मॉर्निंग किस सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए होंगे। जिस पर रौनक ने मुंह बना लिया और अगले ही पल धीरे से फुसफुसाई, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि छोटे बच्चों को किस नहीं करते, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है? रौनक के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आहान की हालत थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई थी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, जैसे उसने कोई अनोखी बात सुन ली है। उसने तुरंत अपने हाथों को अच्छे से क्लीन किया और अपनी बेटी को कुछ सेकंड तक गौर से देखा, फिर गंभीर आवाज में रौनक से बोला, देखो अब जब तुम मेरी बेबी को छूओगी ना, तो तुम्हें भी अपने हाथ क्लीन करने होंगे। मैं नहीं चाहता कि इतना सा भी इन्फेक्शन मेरी बेबी के आसपास जाए, और मैंने जो किस किया उसके लिए सॉरी सॉरी डार्लिंग, मैंने आपको गलती से किस किया। अब मैं आपको नजदीक से किस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको दूर से तो किस कर सकता हूँ, और दूर से किस करने पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर आहान ने जल्दी से दूर से कितने सारे फ्लाइंग किस अपनी प्रिंसेस को दे दिए थे। तभी अचानक उसकी नजर फोन की फ्लैशलाइट पर पड़ी और उसने देखा कि ये आधे घंटे पहले का ग्रुप मैसेज था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और फटाफट रौनक को बच्चे का ख्याल रखने को कहकर सीधे स्टडी रूम में चला गया था। वहीं आकाश बोला, आस्था भाभी अभी सो रही होंगी और अरमान भी आज जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें आज ही उस राजवीर जिंदल का पता लगाना होगा। इस पर अविनाश बेचैन होकर फिक्र जताता है। राजवीर जिंदल अरमान से मिल चुका है और उसने संजना को भी अपने इस खेल में शामिल कर लिया है, और वो संजना को अरमान के करीब भेजना चाहता है, और अरमान को किसी और के साथ देखकर मेरी बहन को बहुत तकलीफ होगी। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इस बार मैं उस राजवीर जिंदल की जान अपने हाथों से लूंगा। अविनाश की आवाज में उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, जिस पर आकाश और सुमित उसे शांत कराते हुए बोले, अविनाश भैया आप अकेले नहीं हैं, हम खुद नहीं चाहते कि अरमान या आस्था की जिंदगी में कोई भी तकलीफें हों। इस बार हम खुद उन दोनों को हर तकलीफों से बचाकर रहेंगे। फिलहाल ये कहने के बाद उन लोगों ने अलग अलग टीम बना ली थी और अब सभी लोग जल्दी से तैयार होकर निकलने वाले थे। उन्होंने दो दो की टीम बना ली थी, अविनाश और अबीर की एक टीम थी, सुमित की आकाश के साथ एक टीम थी, ध्रुव की आहान साथ में एक टीम थी। ये तीनों टीम आज पूरी तरह से राजवीर जिंदल के डाक विला पर नजर रखने वाले थे। इतना ही नहीं, डाक विला से निकलने वाले हर एक मूवमेंट पर, हर एक व्यक्ति पर ये सब अपने तरीके से नजर रखने वाले थे, ताकि इस बार वो राजवीर जिंदल को अच्छी तरह से पकड़ सकें।